नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डगलस स्टोन और शीला हीन की पुस्तक थैंक्स फॉर द फीडबैक, फीडबैक देने की प्रचलित सलाह से अलग,
उसे ग्रहण करने की क्षमता पर केंद्रित व्यावहारिक गैर कथा पुस्तक है।
हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट से जुड़े लेखकों का तर्क है कि फीडबैक का मूल्य केवल उसकी गुणवत्ता से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि पाने वाला व्यक्ति उसे सुन, समझ और उपयोग कर पाता है या नहीं। आलोचना अक्सर गलत, अनुचित, असंवेदनशील या असमय लग सकती है।
फिर भी हर कठिन प्रतिक्रिया को तुरंत मान लेने या खारिज कर देने के बजाय उसे जिज्ञासा और विवेक से परखना सीखा जा सकता है।
पुस्तक कार्यस्थल के प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रबंधकीय बातचीत, मित्रता और पारिवारिक संबंधों में होने वाली प्रतिक्रियाओं को एक ही मानवीय समस्या के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य आज्ञाकारी बनना नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया संभालकर उपयोगी जानकारी अलग करना है। इसीलिए यह संचार की पुस्तक होने के साथ आत्मबोध, संबंधों और सतत सीखने की पुस्तक भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रशंसा, कोचिंग और मूल्यांकन को अलग पहचानना। पुस्तक का पहला केंद्रीय ढांचा बताता है कि फीडबैक एक ही चीज नहीं है। प्रशंसा किसी के प्रयास, योगदान या महत्व को स्वीकार करती है। उसका मुख्य काम प्रेरणा और संबंधों को सहारा देना है। कोचिंग का लक्ष्य सुधार है, इसलिए वह कौशल, व्यवहार या तरीके में बदलाव के संकेत देती है। मूल्यांकन बताता है कि व्यक्ति किसी मानक, अपेक्षा या अन्य लोगों की तुलना में कहां खड़ा है। समस्या तब पैदा होती है जब देने वाला और पाने वाला इन उद्देश्यों को अलग अलग समझते हैं। कोई व्यक्ति अपने काम की गुणवत्ता पर स्पष्ट आकलन चाहता है, लेकिन उसे केवल उत्साहवर्धक टिप्पणी मिलती है। दूसरी ओर, कोई व्यक्ति कठिन प्रयास के बाद मान्यता चाहता है, पर उसे सुधार की लंबी सूची मिल जाती है। दोनों स्थितियों में प्रतिक्रिया उपयोगी होते हुए भी असंतोषजनक लग सकती है। लेखक इस भ्रम को बातचीत की विफलता मानते हैं, केवल संवेदनशीलता की कमी नहीं।
इसलिए पाने वाले को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि सामने वाला प्रशंसा कर रहा है, सिखा रहा है या दर्जा बता रहा है।
वह स्वयं भी अपनी जरूरत साफ कह सकता है, जैसे पहले यह जानना कि प्रदर्शन का आकलन क्या है, या फिर किसी एक कौशल को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग मांगना। उद्देश्य स्पष्ट होने पर प्रतिक्रिया अधिक सटीक, सीमित और ग्रहण करने योग्य बनती है। दूसरा, सत्य ट्रिगर और गलत लगने वाली प्रतिक्रिया में उपयोगी अंश खोजना। सत्य ट्रिगर तब सक्रिय होता है जब फीडबैक का विषय वस्तु ही गलत, अतिरंजित, अनुचित या अनुपयोगी लगती है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि टिप्पणी को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाए।
पुस्तक इस प्रतिक्रिया को दबाने के बजाय उसकी जांच करने का सुझाव देती है।
कई बार प्रतिक्रिया वास्तव में अधूरी, खराब ढंग से कही गई या तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है,
लेकिन उसकी कमियां यह सिद्ध नहीं करती कि उसमें सीखने लायक कुछ भी नहीं है। लेखक उपयोगी जानकारी खोजने के लिए व्यापक आरोपों को ठोस उदाहरणों में बदलने पर जोर देते हैं। यदि कोई कहे कि आप बैठकों में रक्षात्मक हो जाते हैं, तो उचित अगला प्रश्न यह है कि किन स्थितियों में, किस व्यवहार से और उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा।
इससे चर्चा व्यक्ति के चरित्र पर निर्णय देने के बजाय देखे जा सकने वाले व्यवहार पर लौटती है। यह भी जरूरी है कि पाने वाला प्रभाव और इरादे में अंतर समझे। किसी का इरादा सहयोगी हो सकता है, पर उसका असर निरुत्साहित करने वाला हो सकता है, और इसका उल्टा भी संभव है।
पुस्तक का व्यावहारिक सिद्धांत है कि फीडबैक में क्या गलत है और क्या संभवतः सही है, दोनों को अलग अलग देखना चाहिए।
एक छोटा सही अंश भी सुधार का आधार बन सकता है, बिना पूरे आरोप को स्वीकार किए। तीसरा, रिलेशनशिप ट्रिगर में संदेश को संदेशवाहक से अलग करना। रिलेशनशिप ट्रिगर तब पैदा होता है जब प्रतिक्रिया की सामग्री से अधिक ध्यान उसे देने वाले व्यक्ति पर चला जाता है। पुराने मतभेद, भरोसे की कमी, पद का अंतर, प्रतिस्पर्धा या यह संदेह कि सामने वाला पक्षपाती है, प्रतिक्रिया को सुनना कठिन बना सकते हैं।
ऐसी स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि यह व्यक्ति मुझे आंकने वाला कौन है या इसका इरादा ही खराब है।
पुस्तक मानती है कि संबंध का संदर्भ वास्तविक है और हर फीडबैक निष्पक्ष नहीं होता। फिर भी
केवल संदेशवाहक की खामियां गिनाने से संदेश के संभावित मूल्य को पूरी तरह रद्द कर देना सीखने में बाधा बन सकता है।
लेखक संदेश और संदेशवाहक को मानसिक रूप से अलग करने का अभ्यास सुझाते हैं।
प्रश्न यह नहीं कि देने वाला पूर्णतः विश्वसनीय है या नहीं, बल्कि यह है कि उसके अवलोकन में कोई ऐसा पैटर्न है जिसे जांचा जा सके।
साथ ही संबंध संबंधी मुद्दे को दबाना भी समाधान नहीं है। यदि देने का तरीका अपमानजनक था, समय अनुचित था या शक्ति संबंध बातचीत को असुरक्षित बना रहा था, तो इन बातों पर अलग से बात करनी चाहिए। यह विभाजन बातचीत को दो स्पष्ट भागों में बांटता है, एक प्रदर्शन या व्यवहार का मुद्दा,
दूसरा संबंध और संवाद की गुणवत्ता। इससे व्यक्ति न तो अनुचित व्यवहार को सामान्य मानता है, न उपयोगी संकेत को केवल व्यक्ति विशेष के कारण खो देता है। चौथा,
आइडेंटिटी ट्रिगर और आत्म छवि पर चोट की भावनात्मक प्रक्रिया। आइडेंटिटी ट्रिगर सबसे गहरा अवरोध है,
क्योंकि फीडबैक किसी खास काम पर टिप्पणी से बढ़कर व्यक्ति की आत्म छवि पर हमला जैसा महसूस हो सकता है।
स्वयं को सक्षम, जिम्मेदार, दयालु या मेहनती मानने वाला व्यक्ति जब विपरीत प्रतिक्रिया सुनता है तो शर्म, क्रोध, चिंता या निराशा अनुभव कर सकता है।
कभी प्रतिक्रिया पाने वाला एक ही टिप्पणी से यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि वह पूरी तरह असफल है।
पुस्तक इस सर्व या कुछ नहीं वाली सोच को पहचानने और संतुलित करने पर बल देती है।
किसी प्रस्तुति का कमजोर होना यह प्रमाण नहीं कि व्यक्ति अयोग्य है, और किसी आलोचना में तथ्य होना यह प्रमाण नहीं कि उसकी सारी आत्मधारणा गलत है।
लेखक भावनात्मक प्रतिक्रिया को तत्काल निर्णय से अलग रखने की सलाह देते हैं। पहले यह देखना उपयोगी है कि प्रतिक्रिया ने किस पहचान को खतरे में डाला, फिर यह समझना कि घटना, व्यवहार और व्यक्ति के समग्र मूल्य में अंतर है।
हमारी आत्म छवि कई बार दूसरों की नजर से अलग होती है, इसलिए असहमति असामान्य नहीं है।
इस ढांचे का लक्ष्य आत्मविश्वास को कृत्रिम रूप से बचाना नहीं, बल्कि उसे अधिक लचीला बनाना है।
जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को साथ देख सकता है, तब वह कठिन फीडबैक को विनाशकारी फैसले के बजाय सीमित सूचना की तरह ग्रहण कर पाता है।
अंत में जिज्ञासापूर्ण प्रश्न। समय लेकर प्रतिक्रिया और सीखने की जिम्मेदारी पुस्तक का व्यावहारिक पक्ष पाने वाले को निष्क्रिय श्रोता नहीं, फीडबैक संवाद का सक्रिय सहभागी मानता है।
प्रतिक्रिया सुनते ही सफाई देना, पलटकर दूसरे की गलतियां गिनाना या तुरंत बदलाव का वादा करना अक्सर बातचीत को भटका देता है।
लेखक पहले समझने की कोशिश करने की सलाह देते हैं। व्यक्ति उदाहरण, प्रभाव, प्राथमिकता और अपेक्षित विकल्प के बारे में प्रश्न पूछ सकता है।
विशेष रूप से उपयोगी प्रश्न है कि आप मेरे किस एक व्यवहार को ऐसा देखते हैं जो मेरी अपनी प्रगति में बाधा बनता है।
यह सामान्य प्रश्न। क्या आपके पास मेरे लिए कोई फीडबैक है, की तुलना में अधिक केंद्रित और ईमानदार उत्तर आमंत्रित करता है।
पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि अच्छी तरह फीडबैक लेने का अर्थ हर सुझाव को मान लेना नहीं है।
पाने वाला तय कर सकता है कि किस जानकारी पर विचार करना है, क्या अपनाना है और किस बात से असहमत रहना है।
भावनात्मक रूप से तीखी प्रतिक्रिया के बाद समय लेना भी वैध है।
धन्यवाद कहकर बिना तत्काल बहस किए बाद में शांत मन से सामग्री पर लौटना अक्सर अधिक समझदार कदम है।
इस प्रकार नियंत्रण वापस पाने वाले के पास रहता है।
वह अपने विकास की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के निर्णय को अपनी पहचान या कार्य योजना का अंतिम आदेश नहीं बनने देता।
निष्कर्ष में, थैंक्स फॉर द फीडबैक उन पेशेवरों, प्रबंधकों, टीम सदस्यों, शिक्षकों और परिवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें बार बार ऐसी टिप्पणियां सुननी पड़ती हैं जिनसे वे सहमत नहीं होते या जो उन्हें भावनात्मक रूप से विचलित करती हैं।
यह उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक है जो फीडबैक मांगते तो हैं, लेकिन उसे सुनते समय सफाई, प्रतिवाद या आत्मदोष में चले जाते हैं।
पुस्तक का सबसे व्यावहारिक लाभ यह है कि यह प्रतिक्रिया को एक अस्पष्ट और असहज अनुभव से निकालकर पहचानने योग्य प्रकारों,
ट्रिगरों और प्रश्नों में बांट देती है। पाठक समझ सकता है कि उसे प्रशंसा की कमी खल रही है, मूल्यांकन की अस्पष्टता परेशान कर रही है या आलोचना उसकी आत्म छवि को चोट पहुंचा रही है।
यह स्पष्टता बेहतर बातचीत और अधिक सोच समझ कर किए गए बदलाव की संभावना बढ़ाती है।
समान श्रेणी की बहुत सी पुस्तकें फीडबैक देने वाले के शब्दों, तरीके और संरचना पर केंद्रित रहती हैं।
स्टोन और हीन का विशिष्ट योगदान यह है कि वे परिणाम की जिम्मेदारी में पाने वाले की भूमिका को गंभीरता से रखते हैं।
वे खराब ढंग से दी गई या आंशिक रूप से गलत प्रतिक्रिया को भी बिना अंध स्वीकृति के जांचने की विधि देते हैं।
पुस्तक हर प्रतिक्रिया को सही नहीं मानती, न ही विनम्र सहमति को आदर्श बनाती है।
इसका अधिक परिपक्व प्रस्ताव है कि व्यक्ति भावनाओं, संबंधों और तथ्यों को अलग करके सीखने योग्य बात चुन सके।
इसी संतुलन के कारण यह कार्यस्थल और निजी संबंधों दोनों के लिए दीर्घकालिक उपयोग की पुस्तक बनती है।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डगलस स्टोन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें।
फिर मिलते हैं।